एक सेठ फकीर के चरणों में है, बाबा जी मुझे दया करके शांति दीजिए। संत दयालु होते, कृपा निधान होते। बाबा ने कहा शांति तो तेरा स्वभाव है, शीतलता तेरा स्वभाव है। बोले नहीं महाराज मैं बहुत दुखी हूं। उसने सब दुखड़े सुना दिए। बाबा ने देखा कि बड़ा बीमार है, क्या किया जाए। बाबा ने कहा यदि परमात्मा का दर्शन करना है, शांति पानी है, सुख पाना है, तो मेरे साथ घूमने चलना कल को। बोले महाराज संतों के साथ एक कदम उठाना भी अच्छा है, मेरे सौभाग्य होंगे, मैं चलूंगा आपके साथ। दूसरा दिन सुबह हुआ, महाराज और सेठ दोनों चल पड़े घूमने के लिए। सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है। महात्मा ने कुछ कंकड़ और पत्थर इकट्ठे किए, पोटला बांधा, सेठ जी को कहा कि जरा उठा चल। सेठ जी ने पोटला सिर पर लिया, चलते भय। थोड़ा सा ही चलने पर, सेठ का तो अभ्यास भी नहीं था, पोटला भारी था। बोला बाबा जी तो आप तो तेजी से चल रहे हैं, मैं तो नहीं चल सकता। थोड़े पत्थर कम कर दिए। बोले हाँ अब जरा ठीक है, थोड़ा सा एहसास हुआ। और चले, फिर भी बोझा लग रहा है, तो और थोड़े गिरा दो और ऊपर चले। बोले बाबा जी ज्यों ज्यों ऊपर जाते हैं त्यों त्यों थोड़ा भी ज्यादा लग रहा है, ज्यों ज्यों ऊंचे चढ़ते हैं त्यों थोड़ा भी ज्यादा लग रहा है, और ज्यों ज्यों आदमी नीचे होता है तो ज्यादा भी थोड़ा लग रहा है। ज्यों ज्यों आदमी नीचे के केंद्रों में होता है, ज्यों ज्यों हल्की बुद्धि का होता है, त्यों त्यों बहुत सामग्री होते हुए भी उसे संतोष नहीं होता, और ज्यों ज्यों ऊपर उठता है परमात्मा के तरफ, त्यों थोड़ी सामग्री होते भी उसको बहुत सारी लगती और बोझा लगता है। बोले ले चल। चलते चलते आधे से कुछ ऊपर उठे हो, सेठ बोलता है कि बाबा जी ये भी नहीं उठ रहे हैं। बाबा ने कहा और कम कर दे। आखिर जब शिखर के करीब करीब पहुंचना था, देखा कि ये छोटा सा पत्थर भी अब तो बोझा दिख रहा है, फेंको इसको बाबा। फेंका हो गया, आश हल्के हो गए और जल्दी पहुंच गए। बाबा ने कहा बस ऐसे ही है, शांति को पहुंचना है तो बस छोड़ दे इच्छाओं को, वासनाओं को, मेरे तेरे को। ज्यो ज्यो छोड़ता जाएगा त्यों हल्के फूल की ना ही तू परमात्मा के द्वार तक पहुंच सकता है। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, दत्त यदु राजा को कह रहे हैं, कबीर सलुका मलुका को कह रहे हैं, मैं तुमको कह रहा हूं, वही की वही बात है। यदिदं मनसा वाचा चक्षु व्याम श्रवण आदि भी नश्वरं गृह्माणं च विद्धि माया मनोमयम्। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सब मोह मूल है, बुढ़ापा आ गया, लड़के कहने में नहीं चल रहे हैं, खेद होता है, और कहने में चलते हैं तो राग होता है। जमाई अच्छा है तो अहंकार होता है, और बुरा है तो विषाद होता है। पुत्र के घर पुत्र हैं और दादा दादा कहते हैं तो मोह होता है, और पुत्र के घर संतान नहीं है तो चिंता हो रही है। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। जगत के लोगों के साथ मेल है तो तुम्हारा समय नाश कर लेते हैं, और द्वेष है तो अशांति पैदा कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं उद्धव तू किसकी मित्रता करेगा, कब तक लोगों के बीच रहेगा, उठ जा, वैराग्य का आसरा रख। वैराग्य राग रसिको भव, वैराग्य में ही राग रख। वितराग भय क्रोध मुनि मोक्ष पराया, राग भय क्रोध से हटकर मोक्ष के परायण हो जाए मनुष्य जन्म। जैसे अंधा आदमी आंखों में शूल नहीं भूकना चाहता, ऐसे अज्ञानी विषयों के शूल नहीं भूकना चाहते फिर भी भूक रहे हैं। जैसे कोई आदमी अपनी आंख में भाला भूकना नहीं चाहता, या कोई समझदार आदमी अपने भोजन में विष नहीं डालना चाहता, ऐसे ये उद्धव जिज्ञासु अपने जीवन में विषयों का विष नहीं डालना चाहता है। दत्त कह रहे हैं कि यदु राजा, मैंने उस सर्प को भी अपना गुरु बनाया है। सर्प को भोजन मिलता है तो कर लेता है, नहीं तो हवा पान करके भी पड़ा रहता है गुफा में। यदि ज्यादा चतुराई करके बाहर आता है तो पत्थर और कंकड़ पड़ते हैं और मारा जाता है। ऐसे ही मेरा मन भी ज्यादा चतुराई करके बहिर्मुख होता है तो लोगों की धिक्कार और फटकार उसको मिलेगी, इसलिए मैं अपने मन को अंतर्मुख कर लेता हूं। ओम 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 ओम। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरं गृहमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। योधव, ये मनोमय संसार है जो इंद्रियों से देखा जाता है, कानों से आंखों से जो देखा सुना जाता है, मन और बुद्धि से जो सोचा समझा जाता है, वो सब माया मात्र है। इस माया मात्र जगत की चीजों में मूर्ख अज्ञानी फंस मरते हैं। तुम विवेक का आश्रय लेकर अपने अभ्यास और वैराग्य का बल लगाकर दुष्ट इंद्रियों के प्रवाह को रोककर अंतर्मुख करो, फिर मुझे अंतर से ऐसे मिलोगे कि फिर कभी बिछड़ने का दुर्भाग्य न आएगा। जैसे कोई मुर्दे को आलिंगन करने की इच्छा नहीं करता, लोह में तपी हुई पुतली को जैसे कोई आलिंगन करने की इच्छा नहीं करता, विष वाले भोजन का स्वाद लेने की कोई इच्छा नहीं करता, जैसे नरक के रक्त और परु के खंड में गोते खाने की कोई इच्छा नहीं करता, जैसे विष्टा के हौद में आराम लेने की कोई इच्छा नहीं करता, ऐसे ही विषय विष्टा में जो आराम की इच्छा नहीं करता वो जिज्ञासु मुझे जल्दी पा लेता है। जैसे अंधे ड्राइवर की कार में बैठने की पथिक इच्छा करे तो गिर जाता है, मर जाता है, ऐसे ही अहंकार अंधे के कहने में जो साधक चलता है उसकी साधना नष्ट हो जाती है। मैंने दत्तात्रेय कहते हैं कि हे यदु राजा, मैंने मकड़ी को भी अपना गुरु बनाया है। जैसे मकड़ी अपने से जाला निकालती है और फिर अपने में समेट लेती है, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी चित्त शक्ति द्वारा ये जगत का विस्तार करते हैं और फिर अपने में समेट लेते हैं। जीव भी अपने चैतन्य सत्ता के द्वारा हर रोज संसार का विस्तार करता और रात्रि को समेट लेता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे समुद्र में लहरियां हैं, ऐसे ही ये विश्व मुझ में है। मैं विश्व स्वरूप आत्मा हूं, ये संसार की लहरियां हैं। मुझे कोई ग्रहण नहीं, कोई त्याग नहीं, मैं अपने आप में परितृप्त हूं। पुराणों की कथा है, कोई बाबा के चरणों में कठियारे ने प्रणाम कर दिया। बाबा जी पूरा नहीं होता है, काठियां बेच बेच के जिंदगी बर्बाद किए जा रहा हूं, कृपा हो जाए नाथ। बाबा ने कहा बेटा थोड़ा आगे जाया कर। कठियारा आगे गया तो चंदन के लक्कड़ मिलने लगे। कोई गरीबी दूर हुई, कुछ अमीरी आई। बाबा के साथ कभी कभी चर्चा कर लेता था धर्म कर्म की। फिर बाबा को कहा कि बाबा मेरे से और लोग बहुत मालदार हैं, कुछ कृपा करो। बाबा ने कहा और आगे जाओ। कहानी कहती कि वो आगे गया, उसे खाने मिली तांबे पीतल की और कोई धातुओं की, अमीर हुआ। कुछ समय के बाद बाबा के पैर पकड़े, बोले बाबा और यदि कोई आदेश हो तो कहो। बाबा ने कहा और आगे जाओ। सुवर्ण और हीरों की खाने मिली, अत्यंत मालदार हुआ। झोपड़ी की जगह पर महल हो गए, टूटे बर्तनों की जगह पर सुवर्ण की थालियां हो गई। कंधे पे बोझा उठाने की जगह पर अब रथ में घूमने का मिल रहा है, लेकिन चित्त में शांति नहीं है। चित्त में आनंद नहीं है। बाबा के पैर पकड़े, बोले बाबा पहले जो काठी करके जीता था उसमें तो मजे की नींद आ जाती थी, अब तो नींद भी हराम हो गई। बाबा ने कहा वापस आ। बोले बाबा वापस आने को कहते हो तो कंपन होता है, अब कृपा करो वापस भी ना आऊं और कुछ शांति मिले। बाबा ने कहा तो और आगे जा, जवार हाथ मिले। बोले बाबा ये सब हुआ है लेकिन अब चित्त में डंक लगते हैं कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये छूट जाएंगे क्या होगा। बाबा ने कहा और आगे जा, और आगे गया तो एक आत्मनिष्ठ महापुरुष की झोपड़ी दिखाई दी, जो सदा परमात्मा की मय को पीकर, जिनके आंखों से वो मदिरा टपक रही है, जिनके होठों से वो मदिरा हिल रही है, जिनके दिल और दिमाग से ईश्वर आनंद के सिवाय और कोई बात सत्य नहीं भासती, ऐसे एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की झोपड़ी दिखाई दी। कठियारा को बड़ी श्रद्धा हुई कि एक बाबा ने आगे आगे करते हीरे जवाहरात तक पहुंचा दिया, अब ये बाबा मिल गए। बाबा के चरणों में बैठे। बाबा में ऐसा था, कठियारा था, फिर तांबे की, फिर सोने की, ऐसी खाने मिलते मिलते अब लौकिक ढंग से तो मैं बहुत सुखी दिखता हूँ, संसारियों को तो मैं बड़ा सेठ दिखता हूँ, नगर सेठ दिखता हूँ, लेकिन चित्त में शांति नहीं है। आगे जाते जाते अब आप तक पहुंचा हूं। बाबा ने कहा कि मेरे तक पहुंचा है, अब तू अपने तक भी तो पहुंच। कठियारा कहता कि बाबा नहीं जानता हूं मैं, कठियारा पुराना, मेरी जात कठियारा है, अभी सेठ हूं, ये सब जात बात दब गई, अब तो सेठ जी हूं। बाहर से लोगों की नजर सेठ हूं लेकिन अंदर से बड़ा कंगाल हो गया हूं, कोई खुशी नहीं भीतरी, भीतरी कोई तसल्ली नहीं, भीतरी कोई शांति नहीं। बाबा ने कहा इतना यदि समझ में आता है तो सौभाग्य है, कई अंधों को तो पता ही नहीं चलता और जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कई ऐसे अंधे हैं कि धन के मद से अपने को सेठ मानकर न साधु की शरण पहुंचते न अपने आत्मा की शरण आते। तेरे में सद्गुण है क्योंकि साधु के आशीर्वाद से जो संपत्ति मिली है उसमें तेरे को विवेक है, अब तू ऐसा कर, थोड़े प्राणायाम कर, थोड़ा नाम संकीर्तन कर, ऐसा चालू कर दे घर में, करते करते फिर मेरे पास आया करना। उसने ऐसा किया, कुछ दिन बीते, अन्नमय कोश से कुछ अंतर की यात्रा हुई प्राणमय कोश में। जब प्राणमय कोश में यात्रा हुई, बाबा ने सामने बिठाकर थोड़ा ध्यान कराया और संप्रेक्षण शक्ति का धक्का लगा दिया, प्राणमय कोश में जो स्थिति थी वो मनोमय कोश में चला गया। ध्यान करता है तो मन की बड़ी शांति महसूस हुई, बड़ा आनंद आता है, आंखों से हर्ष के आंसू टपक रहे हैं, चित्त धन्यवाद से भर गया है, बोलने की इच्छा नहीं होती, देखने की इच्छा नहीं होती, निहारने की इच्छा नहीं होती, घर जाने की भी इच्छा नहीं होती। इतना अद्भुत माल पाया है कि जिसका बयान नहीं। बाबा के तरफ देख के फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। बाबा समझ गए कि ये मनोमय कोश और आनंदमय कोश के करीब करीब पहुंच गया, परमात्मा के निकट की यात्रा के काबिल हो गया है। बाबा ने कहा कहो कैसा है, और कुछ खान चाहिए, हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए? बोलता है बाबा कुछ चाहिए तो गदाई है, कम चाहिए तो खुदाई है, और कुछ न चाहिए तो शहनशाही, अब तो कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया, सब देख लिया, मैंने अपने को ही ठगा, हीरे और मोती तो नहीं बहारे, अपने कर्मों को ही मैंने बुहारा, स्वर्ण के बर्तनों में मैंने भोजन नहीं किया बाबा, इन बर्तनों ने मेरा भोजन कर लिया। बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, मौत करीब है, बहुएं और बेटे सोचते हैं कि कब मर जाए, जिनके लिए सब कुछ किया वे भी अपने नहीं बाबा, अब तो कृपा करो कि और गहरे में ले जाओ। बाबा समझ गए कि इसके पास विवेक और वैराग्य है, जो कुछ दिखता है उसमें यदि उपरांता आ रही है तो समझ लेना कि आखिरी जन्म है, जो कुछ दिखता है उसमें रुचि हो रही है तो समझना अभी बहुत कुछ माताओं के गर्भ में से शासन करना बाकी है, बहुतों पिताओं की शिशना से पसार होना बाकी है। गरीब बेचारे धनवान नहीं जानते हैं कि धन से सब कुछ नहीं होता। जगत की विद्या को पढ़कर अभिमानी लोग नहीं समझते कि बाह्य विद्या कोई सहारा नहीं है, सच्चा सहारा तो तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा है। जितने तुम उसके करीब होते हो उतना जगत तुम्हारी अनुकूलता करता है, और जितना तुम उससे दूर होते हो उतना जगत भी तुम्हें ठुकराता है। जीसस जितना आत्मा के करीब थे उतना लोगों ने उनको पूजा, जब लोक संपर्क में ज्यादा रहे आत्मा को पीठ दी। बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक लोगों के संपर्क में रहे जीसस। जीसस अपने देश में गए तो लोगों ने देश को सजाया था यहूदियों ने, उन्हीं यहूदियों ने मिलकर जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया। जैसे मैग्नेट के करीब होता है लोहे का टुकड़ा तो छोटे छोटे कणों को पकड़ रखता है, और जो लोहे चुंबक से दूर हुआ तो छोटे छोटे कण उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही चुंबक का चुंबक तुम्हारा आत्मा, जितना तुम अंतर्मुख होते हो उतना लोग तुम्हें प्यार करते हैं और लोग तुम्हारे करीब होते हैं, और जितना तुम अंतर्यामी को पीठ देकर लोगों के चक्कर में आ जाते हो उतना तुम लोगों से ठुकराए जाते हो। जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया। उस वक्त जीसस का वचन था कि मेरे प्रभु मैंने तेरा त्याग कर दिया, इसलिए मेरे को देखना पड़ता है। अपने शिष्यों को कहा कि मैं मानता हूं कि मेरी शक्ति निकल गई है, मुझे ऐसा हो रहा है कि मेरी शक्ति सब बिखर गई है। अंत समय पश्चाताप करते जीसस ने उस योग की कला का आश्रय लिया और प्राणों को चढ़ा दिया। मूर्खों ने समझा कि ये फांसी लग गई इसको, लेकिन 3 दिन तक उन्होंने प्राण दसवें द्वास चढ़ा दिए। बाद में जब उन्हें खोल दिया गया तो छटक गए और कश्मीर में जाकर फिर पुनः अपनी एकाग्रता स्थापित की, और कश्मीर में कई जीसस के रहने के चिन्ह मिलते हैं। ईसाइत वहां नहीं पहुंची थी, ईसाइत बाद में शुरू हुई, ईसा उधर पहले पहुंचे थे। वहां का प्रचलित मलहम है ईसा मलहम। लोगों का कहना है कि ईसा को जब घाव हो गए थे, दुर्जनों ने सताया था, तो इसी मलहम से वो ठीक हुए, और ये मलहम ईसा के आशीर्वाद से अब बड़ा प्रसिद्ध हुआ। इस मलहम में बड़ा चमत्कार है, सब घावों को ठीक करता है। जो आत्मा के करीब होता है उसके नाम से सब घाव ठीक हो सकते हैं, तो तुम यदि आत्मा के करीब हो जाओ तो तुम्हारे कई विकार के घाव भी तुम्हें ठीक कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं उद्धव मुझे साथ ले चल, मैं आपका हूं, मैं आपके साथ रहूंगा, ऐसी दुर्बुद्धि को छोड़। साथ कोई आया नहीं, साथ कोई गया नहीं, तत्व से कोई बिछड़ा नहीं और शरीर से कोई कभी साथ रहा नहीं, तो पुत्र और परिवार में आसक्ति का त्याग कर, देह को मेरा मानकर इस देह के पीछे, पालन पोषण के पीछे शिशुपाल की नई जिंदगी मत गंवाना। जो शिशुओं को पालने में लग जाता है उसे शिशुपाल कहा जाता है। जो बाल बच्चों की चिंता में आत्मा का घात कर लेता है वो शिशुपाल है, उसका घात भर सभा में हुआ करता है। हे उद्धव तू संतर्यामी आत्मा का सहारा ले, उद्धव तू वैराग्य का सहारा ले, बद्री का आश्रम जा, जो मैंने तुझे उपदेश दिया है उसको विचार कर और अंदर में अपने स्वरूप को पाले। दत्त यदु राजा को उपदेश दे रहे हैं कि राजन तेरे राज्य से तूने सब सुख देख लिए। कठियारे को वो महात्मा कह रहा है कि कठियारा तूने धन जायदाद देख ली, जिससे धन का उपभोग होता है, जिससे जायदाद का स्वाद आता है, ये लोलुप मनुष्यों को इंद्रियों के विषय लुभा लेते हैं। जैसे तिनखों को हवा बहा लेती है ऐसे मूर्ख आदमी के मन को इंद्रियां बहा ले जाती है। तू विवेकी बनना, अब अपनी साधना को नष्ट भ्रष्ट मत करना, अपने मौन और एकांत शांति का बलिदान तो तुच्छ विषयों के पीछे नहीं देना। जैसे मूर्ख बच्चा बिस्किट की लालच से स्वर्ण का टुकड़ा दे डालता है, ऐसे ही इंद्रियों की लालच से तुम आत्मा की शांति का त्याग नहीं करना। अभागे आदमी को सत्संग में और ध्यान में रुचि नहीं होती। ये कठियारा तू सौभाग्यशाली होना, अंतर में छुपे हुए तेरे परमात्मा को प्रार्थना करना कि हे प्रभु मुझे सतबुद्धि दे, मुझे जन्म मरण की फांसी से छुड़ा, ये महाव्याधि से छुड़ा। हे कठियारा, छोटी छोटी व्याधियां तो मंत्र तंत्र से भी दूर हो जाती है, हकीम और डॉक्टरों से भी दूर हो जाती है, लेकिन ये महाव्याधि आत्मज्ञान से निवृत्त होती है।